ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की पिछले दिनों से चल रही बैठक अंतर्गत आज समूहगत बहस हुई पूरी। बहस में उठे सवालों का शीर्ष नेता कल की बैठक में देंगे जवाब। कांग्रेस सभापति देवबा ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं पर नहीं होना चाहिए आघात। कोरोना वायरस की आशंका वाले मरीजों का अलग चिकित्सा केंद्र स्थापित कर इलाज किया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री ढकाल का कथन। और 47 सालों के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से आधिकारिक तौर पर हुआ अलग। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की पिछले दिनों से चल रही बैठक अंतर्गत आज समूहगत बहस पूरी हुई है। राष्ट्रीय सभा गृह में हुई बैठक में दोनों अध्यक्षों केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु प्रसाद पौड़ेल के सांगठनिक प्रतिवेदन और विधान संशोधन प्रस्ताव पर समूहगत रूप में सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी है। पुनः कल दोपहर के लिए बुलाई गई बैठक में समूहगत बहस में उठाए गए सवालों के जवाब शीर्ष नेतागण देंगे। बैठक के बाद संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने पत्रकारों से कहा कि सरकार द्वारा किए गए कामों का प्रचार न होने के कारण पार्टी में आलोचना हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वाभाविक रूप से सरकार के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं उठती बल्कि कमी कमजोरियों का भी जिक्र होता है और इसलिए आलोचना भी हुई है। प्रधान न्यायाधीश चोलिंद्र शमशेर जबरा ने कहा कि न्याय क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों को निष्पक्ष होकर न्याय का निरूपण करना होगा। आज जनकपुर धाम में उच्च अदालत के न्यायाधीशों के लिए आयोजित प्रदेश स्तरीय गोष्ठी में प्रधान न्यायाधीश जबरा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायालय जनता की आस्था और भरोसे का केंद्र है, इसलिए न्यायालय के काम पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और मितव्ययी होने चाहिए। उन्होंने पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की भी बात पर भी जोर दिया। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवबा ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं पर कहीं से भी आघात पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रदेश नंबर 5 की प्रदेश सभा के प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता बलदेव शर्मा पोखरेल ने पोखरेल के निधन की 13वीं पुण्यतिथि पर आज रूपंदेही के टिकली गढ़ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभापति देवबा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में होने वाले आंदोलन को कांग्रेस की ओर से हमेशा समर्थन रहेगा। 82 वर्षीय नेता पोखरेल का मार्च 6 को निधन हुआ था। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि साहित्य से सामाजिक मूल्य मान्यताओं को बचाए रखने में मदद मिलती है। सर्वज्ञ वाग्ले द्वारा लिखित उपन्यास पुनर्वास का आज काठमांडू में लोकार्पण करते हुए वरिष्ठ नेता पौड़ेल ने ये बात कही। कोरोना वायरस की चपेट में रहे चीन के वुहान शहर में मौजूद नेपाली नागरिकों को चीनी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित बताया है। आज चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये बात साझा की है। इस बात का इस जिक्र के साथ ही कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और स्वदेशी व विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन आवश्यक संयंत्र खड़ा कर चुका है। बयान में कहा गया है कि नेपाली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंध में पूरी तरह जानकारी ली गई है और प्रतिरक्षात्मक सभी उपाय अपनाए गए हैं। समाचार यूटी नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय व्यापार विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरह्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि कोरोना वायरस की आशंका वाले मरीजों के उपचार के लिए हॉस्पिटल के बाहर अलग ही उपचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। चितवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की आशंका वाले मरीजों को इस उपचार केंद्र में खाने, रहने और इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अब तक 100 से अधिक शैया की विशेष उपचार आइसोलेशन कक्ष और 25 शैया वाली 2 मोबाइल हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया है। इसकी जानकारी मंत्री ढकाल ने दी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चितवन भरतपुर हॉस्पिटल ने उच्च सतर्कता अपनाई है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय ने कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए उच्च सतर्कता अपनाने के लिए सरकार ने सभी संयंत्रों का प्रभावकारी रूप से परिचालन करने की जानकारी दी है। कोरोना वायरस के संभावित प्रकोप के जोखिमों को नियंत्रण करने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए आदि विषयों पर की गई विचार विमर्श में आज मंत्री भट्टराय ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने बताया कि जोखिम नियंत्रण के लिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल तथा चीन से जुड़ी सीमाओं में स्वास्थ्य कक्ष संचालन किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। इसके साथ ही दोनों के बीच के लगभग आधी सदी पुराने रिश्ते का अंत हो गया है। ब्रिटेन के मतदाताओं ने 3.5 साल पहले यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनादेश दिया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया है। 23 जून 2016 को जनमत संग्रह में 52% मतदाताओं ने ब्रेक्जिट का समर्थन और 48% ने इसका विरोध किया था। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर लंदन में जहां ब्रेक्जिट के समर्थकों ने बड़ी संख्या में संसद के पास जमा होकर इसका स्वागत किया, वहीं स्कॉटलैंड में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। स्कॉटलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए मतदान किया था, मगर पूरे देश की राय इससे अलग आई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की पिछले दिनों में से चल रही बैठक अंतर्गत आज समूहगत बहस हुई पूरी। बहस में उठे सवालों का शीर्ष नेता कल की बैठक में देंगे जवाब। कांग्रेस सभापति देवबा ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं पर नहीं होना चाहिए आघात। कोरोना वायरस की आशंका वाले मरीजों का अलग चिकित्सा केंद्र स्थापित कर इलाज किया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री ढकाल का कथन। और 47 सालों के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से आधिकारिक तौर पर हुआ अलग। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।